शांति। सभी कहेंगे प्यार से ओम शांति, ओम शांति। दो दिन से आप बहुत कुछ सुन रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें सुन रहे हो, तो काफी हद तक वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति आ चुकी होगी। खुद को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, समय को पहचान लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है उसे भी समझ लिया। अभी हम आपको एक यात्रा पर ले जाएंगे। किसकी यात्रा, कौन सी यात्रा? पिता श्री ब्रह्मा बाबा की यात्रा। अभी अभी आपने गीत सुना, कौन परमात्मा ने किस में प्रवेश किया और अब नव युग के निर्माण का साक्षात्कार कराया, उसकी कहानी। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की कहानी। कई पूछते हैं ये संस्था कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई और अब तक क्या चल रहा है, तो वो सारी बातें हम आपको अभी सुनाएंगे। तो आप जिस स्थान पर आए हो, हम इसे कहते हैं यज्ञ, कोई इसे परिवार भी कहते हैं, ईश्वरीय परिवार है, ये स्कूल है, यूनिवर्सिटी है और साथ साथ यह एक यज्ञ भी है। तो यज्ञ में क्या किया जाता है? आहुति डाली जाती है। तो इस यज्ञ में भगवान ने हमें यही प्रेरणा दी है कि इसमें बुराइयों की आहुति दो, विकारों की आहुति दो। हम शिव के मंदिर में जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं या जो कुछ भी ले जाते हैं, हम समझते हैं हम भगवान को अर्पित करेंगे। लेकिन शिव के मंदिर में अक्सर देखा गया है अक के फूल, वो ये कई प्रकार के अलग अलग फूल जो कोई बहुत सुगंधित नहीं होते हैं वो हम अर्पित करते हैं। तो भगवान हमसे कोई मिठाइयाँ और बहुत सुंदर फूल और वैभव वो सब नहीं मांगते। भगवान हमसे वो मांगते हैं जो उन्होंने दिए नहीं है हमें। हम जो ईश्वर के पास ले जाते वो तो हमने ही दिया है। हम तो यही कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, तो भगवान का ही दिया हुआ है। हम जो कुछ भी देते हैं, प्रकृति की चीज कोई देते हैं वो भी तो ईश्वर की चीज है। तो भगवान को हम क्या दें जो भगवान ने हमें नहीं दिए है? वो हमको भगवान को देनी है। जो उन्होंने ही दिए है वो क्या रिटर्न करेंगे हम? वो तो दे दी हमको, तो हम क्या उनको दे जो भगवान ने नहीं दी है? वो है हमारी बुराइयां, हमारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भगवान चाहते। इसलिए यज्ञ में स्वाहा 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 किया जाता है। तो भगवान ने ये यज्ञ रचा है। कैसे इस सृष्टि का परिवर्तन इस यज्ञ के द्वारा होता है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है और इस कलयुगी दुनिया का अंत होकर नई दुनिया आती है। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ध्येय है, लक्ष्य है। यहाँ आकर कई पूछते हैं ना कि आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, इस संस्था का लक्ष्य क्या है? तो हम उनको यही कहते हैं, मनुष्य से देवता बनना। ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बहुत बनते हैं, लेकिन भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, नर को नारायण बनाते हैं, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो वो कैसे हम बन सकते हैं, वो इस यज्ञ में बुराइयों को स्वाहा करके बनते हैं। तो ये इतिहास आपको सुनाएंगे पिता श्री ब्रह्मा बाबा का, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं। इनका पूर्व नाम क्या था, कैसे इनके जीवन में परिवर्तन आया, वो सब बातें आपको सुनाएंगे। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी आपको बताएंगे। ये नाम उनको स्वयं परमात्मा ने दिया। इनका शारीरिक नाम तो कुछ और था, लेकिन प्रजा पिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा को कहते हैं। तो अब वो नई सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने जिसको निमित्त बनाया उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। तो कौन थे प्रजापिता ब्रह्मा, और क्योंकि उनको ये प्रेरणा दी कि अपना तन मन धन सब स्वाहा करके इस भारत भूमि को खास और विश्व को आम बदलना है, तो एक बीज उन्होंने डाला अपने तन मन धन का, और आज एक वट वृक्ष के रूप में सारे विश्व में 137 देश, अगर और भी ज्यादा 140 देशों में हमारी ये ब्रांचेस है और ये हेडक्वार्टर्स है जहां आप सभी पधारे हैं। बाबा का पूर्व नाम दादा लेखराज था, और लखीराज बाबू के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे, हीरे जवाहरातों के गहने बनाते थे और राजाएं महाराजाएं उनके ग्राहक थे। तो कैसे महलों में जाना होता था, राजाओं महाराजाओं को ये बेचना होता था, तो बहुत सुंदर उनकी सेल्समैनशिप भी थी। तो पर जितने ही धनवान थे उतने ही बाबा बहुत दानी भी थे, और दान भी उनका इतना श्रेष्ठ था कि जो भी उनके द्वार को सेटिस्फाई करते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां, 2 बेटे, और लगभग सबकी शादी हो चुकी थी, पोतरे दोतरे थे, बड़ा परिवार था। और कैसे जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तब उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो धनी भी थे, फिर दानी भी बहुत थे, जो उनके द्वार पर आता था वो कभी भी हाथ खाली नहीं जाता था, ये बाबा की विशेषता थी। उनके घर में कई साधु संतों को भी बुलाता था और सत्संग कराता था, तो मानो एक दान बहुत ही आस्था थी, और धनवान तो थे ही, और एक खोज थी। किस बात की खोज, सत्य को जानने की। धनवान थे, दानी थे, बहुत भक्ति करते थे, विष्णु के अटूट भक्त थे, कई शास्त्र उन्होंने पढ़ डाले, कई गुरु किए, लेकिन सबसे कई प्रश्न पूछते थे क्योंकि उनको सत्य को जानने की इच्छा थी। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आखिर ये भगवान ने दुनिया क्यों रची, कईयों के ये प्रश्न होते हैं, परंतु उनको किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो कैसे एक दिन की बात है, जब उनकी आयु 60 वर्ष की थी, बिजनेस फ्लरिशिंग, धन बहुत और सुख सुविधाएं बहुत, राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना, और दान पुण्य भक्ति सब कुछ था, लेकिन उस खोज के कारण बाबा हमेशा एक अंदर में उनको आता था, हे भगवान आप हमको अपना दर्शन दो। विष्णु के भक्त थे तो कैसे, एक दिन की बात है, बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, बहुत ही सुंदर साक्षात्कार हुआ। विष्णु के कई रूप, कई मंदिर है विष्णु के, वो सारे उनके सामने आते गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आकर प्रकट हुए और उनको एक वरदान दिया। और वो वरदान क्या था, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। अब शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु ने उनको ये वरदान दिया। तो जब बाबा ने ये सुना कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो, तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, मैं इन जैसे कैसे हूँ। और बाबा के सामने ये विष्णु के कई रूप आते गए आते गए आते गए, और एक ही वरदान सभी रूपों ने दिया विष्णु के, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। जब वो ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, इनका दास हूँ, सेवक हूँ, मैं तो इनकी भक्ति करता हूँ, मैं थोड़ी इन जैसा हूँ। लेकिन बाबा को कुछ समझ में नहीं आया तो बाबा ने अपने गुरु से पूछा, गुरु को भी इतना नहीं समझ में आया तो गुरु ने कहा जरूर इसमें कोई राज होगा, भगवान को आपसे कोई बड़ा काम करवाना होगा, इसलिए विष्णु भगवान को आपको वरदान मिला कि तुम मेरे जैसे हो। तो बाबा को लगा कि मुझे क्या काम करना होगा, मुझे वो भी तो पता चले, तो मैं करने लिए तैयार हूँ जो भगवान कहेंगे। अब वो तो बताया नहीं, बस तुम मेरे जैसे हो यही कह दिया। तो गुरु ने उनको राय दी कि आप उसके लिए एकांतवास में चले जाओ, क्योंकि बिजनेस के बीच में तो ये सब कुछ अनुभव नहीं होगा, तो एकांतवास में चले जाओ तो आपको और अनुभव होंगे, भगवान आपसे क्या कराना चाहता है। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे, उस समय 1936 में उनको ये सब दिव्य साक्षात्कार हुए। तो जब बाबा ने ये अनुभव किया कि मुझसे भगवान कुछ कराना चाहते हैं, लेकिन क्या कराना चाहते वो पता नहीं था, तो बाबा ने सोचा मैं बनारस चला जाता हूँ, तब तो भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, एक ही था, 1936 की बात है। तो बाबा बनारस चले गए और बनारस में विष्णु का बहुत ध्यान किया। तो कैसे अचानक एक दिन बाबा को इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने तीन रूप से कलयुगी दुनिया का विनाश देखा। एक रूप था अणु युद्ध, दूसरा रूप था सिविल वॉर अर्थात जिसमें ग्रह युद्ध हुआ, और तीसरा था प्राकृतिक आपदाएं। तो एक अणु युद्ध जो पहले कभी सोचा भी नहीं था वो साक्षात्कार बाबा को हुआ 1936 में। ये तो बाद में 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराया, लेकिन बाबा को उसी समय 1936 में इसका साक्षात्कार हो गया था। फिर ग्रह युद्ध का भी साक्षात्कार हुआ, ग्रह युद्ध तो बाद में हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत ब्लडशेड हुआ, लेकिन बाबा ने उनको पहले से ही साक्षात्कार कराया था। और फिर बहुत प्राकृतिक आपदाएं भी हुई, सुनामी आई और क्वेटा शहर बलूचिस्तान में है वो पूरा धस गया, पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया उस भूकंप में, तो वो सब आया। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये सब क्या है? तो बाबा कहते थे ये ट्रायल है, ये एक ट्रेलर है। तो उस समय जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने कुछ भी समझा नहीं, क्या इसका मतलब, ये मैं क्यों देख रहा हूं और भगवान को मुझसे क्या कराना है। तो फिर उसके बाद बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें अखंड ज्योति का वह तत्व देखा, उसमें छोटे 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 सितारे देखे और धीरे धीरे वो सितारे नीचे आते गए, उस ज्योति के महत्त्व से नीचे उतरते गए। और जैसे नीचे उतरे तो एक एक वो सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया और बाबा देखते रह गए, देखते रह गए कैसे ये पूरा संसार जो नष्ट हो चुका था वो धीरे धीरे एक सुंदर स्वर्ग का रूप ले लिया। और पांचों ही तत्व कितना सुंदरतम स्वरूप में आ गए ये बाबा ने देखा। अब वो दृश्य इतना सुंदर था जो बाबा उसी में जैसे मग्न हो गए। फिर बाबा ने इसके आगे देखा एक बहुत सुंदर एक सोने का महल जिसमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण विराजमान है, और वो कैसे महल से बाहर निकले और जैसे ही बगीचे में आए फुहारे चलने लगे, सुगंध आने लगी और सब रास होने लगे, मानो खुशियां ही खुशियां। इतनी सुंदर अनुभूति बाबा ने की। और फिर बाबा को एक आकाशवाणी हुई, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी स्वर्गीय दुनिया आने वाली है और ये दुनिया तुमको बनानी है। ये भगवान ने उनको काम दिया, ये दुनिया तुमको बनानी है। तो जब बाबा ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को आया, मैं ये दुनिया जो इतनी सुंदर देखी मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी शक्ति है जो मैं ऐसी दुनिया बनाऊं। लेकिन बाबा को कम से कम इससे वैराग्य तो आ गया, कलयुगी दुनिया का महाविनाश देखकर और फिर एक नई दुनिया को देखकर उनको इतना बड़ा काम दिया गया, वो सब समझकर बाबा को इस कलयुगी दुनिया से वैराग आ गया। और उस वैराग्य के फल स्वरूप बाबा ने क्या किया, वो बनारस में थे तो बनारस से सीधा कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा शोरूम था जहाँ अंग्रेज भी आते थे और राजा महाराजाओं के भी लोग आते थे गहने खरीदने के लिए, बहुत बहुत बड़ा विस्तृत उनका बिजनेस था। तो बाबा गए और अपने बिजनेस पार्टनर को कह दिया कि अभी मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा को वो हीरे बिल्कुल जैसे पत्थर दिखाई देने लगे, उनकी दृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया, ये धन दौलत माल इज्जत ये सब जैसे फीका लगने लगा, क्योंकि भगवान ने इनको बहुत बड़ा काम दिया था दुनिया को बदलने का, पर कैसे करना ये उनको पता नहीं था। पर वैराग्य जिससे आया उसके बाद बाबा ने सारा बिजनेस को वाइंड अप कर दिया और बिल्कुल सिंपल हो गए। नहीं तो बड़ा ठाट था उनका, परंतु धोती कुर्ता जो ऐसे बिल्कुल सिंपल बन गए और वापस कलकत्ता से अपने घर गए। तो जब परिवार वालों ने उनको देखा कि ये सारी बिजनेस वाइंड अप कर लिए इन्होंने और बिल्कुल ऐसे साधारण हो गया, तो उनको समझ में नहीं आया। और वो घर में एकांत में रहता था, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करना, बिल्कुल आइसोलेशन में जैसे चला गया, सॉलिट्यूड। और फिर उसके बाद बाबा को ज्योति का साक्षात्कार हुआ, निराकार शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा, वो कैसे बाबा के नजदीक आता गया, नजदीक आता गया और नजदीक आते आते उनके अंदर प्रवेश हो गया, ये बाबा ने देखा। एकदम बाबा की आंखें तो बंद थी, परंतु उनके चेहरे पर एकदम लाल लाल वो ललाट इतना चमकने लगा जो घर वाले देख करके हैरान हो गए, ये बाबा क्या देख रहे हैं। और फिर एक आकाशवाणी उनके मुख से निकली और उस आकाशवाणी में क्या शब्द थे, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। परमात्मा शिव ने अपना परिचय उनके मुख से दिया, लेकिन बाबा तो ध्यान मग्न थे। और फिर जब आंखें खोली तो आंखें भी इतनी लाल लाल थी, तो घर वालों ने पूछा, आपने क्या अनुभव किया बाबा? बाबा कहते थे, बुजुर्ग थे, तो बाबा ने कहा कि कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी और वो मेरे अंदर प्रवेश कर गए, बस बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। परंतु घर वालों ने परमात्मा की पहचान उनके मुख से सुनी कि मैं निजानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। शिव ने अपनी पहचान उनके मुख द्वारा दी। अब इतना सुंदर ये अनुभव जो बाबा ने किया, पर क्या समझ में नहीं आया। और फिर कुछ चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार हुए? बाबा खड़े होते थे, सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ और खड़े होते थे, तो जो भी भाई बहन आते थे बाबा को देखते थे तो वो साधारण बूढ़ा शरीर धोती कुर्ता वाला वो ओझल हो जाता था और श्री कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजाता हुआ, मोर मुकुट पहन लगाया हुआ, और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे बाबा से। अब बाबा कहता था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये तो ईश्वर की शक्ति है। लेकिन वो चमत्कार जो देखा उससे कई लोगों को समझ में नहीं आया कि ये साक्षात्कार कैसे हुआ। मानो एक क्रांति फैल गई, दूर दूर से लोग आकर देखने लगे कि एक दादा लेखराज है, उनके आगे अगर जाते हैं और वो खड़ा होता है तो उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो दूर दूर अमेरिका तक टाइम मैगजीन में ये न्यूज आ गई थी। ये 1936 की बात है, आज से 90 साल पहले हैदराबाद सिंध में, जो उस समय भारत का ये हिस्सा था। और फिर तो ये क्रांति इतनी बढ़ गई जो लोगों को घर में भी अनुभव होने लगे, श्री कृष्ण को देखते थे और श्री कृष्ण से जैसे मिलना चाहते थे साक्षात्कार में, और उनके नजदीक जाते थे तो श्री कृष्ण दूर चला जाता था और बाबा साकार ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी उनके आगे होता था और श्री कृष्ण पीछे से कहता था, अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ, वहां मैं आपको मिलूंगा। पर बाबा को तो कोई जानते नहीं थे। परंतु एक दूसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई कि ये साक्षात्कार जो हुए वो महिलाओं को ज्यादा हुए, फीमेल्स को ज्यादा हुए, और फीमेल्स को ज्यादा होने कारण वो साक्षात्कार करके बाबा के पास आती थी, फैमिलीज की फैमिलीज बाबा के पास आती थी, कई दुखी आत्माएं बाबा के पास आती थी और बाबा का से कृष्ण का दर्शन करके इतनी शांति का अनुभव करती थी। तो जो महिलाएं आती थी ये भी एक दूसरी क्रांति हो गई। तो पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की, दूसरी क्रांति थी फीमेल ज्यादा आई और कई फिर बाबा के पास समर्पित भी हो गई, तो जैसे एक परिवार बन गया। तो उसमें जो मुख्य थी, जिनको हम ओम राधे कहते हैं, राधे उनका नाम था, उसकी माँ बहुत दुखी थी क्योंकि इनके पिता ने शरीर छोड़ा था, तो बहुत दुखी थी और बिजनेस इनकी ठप हो गई। वो भी बहुत बड़ा व्यापार करते, देवाला निकाला तो वो हार्ट फेल हो गए और गुजर गए। तो केवल माँ बेटी थी और कोई नहीं था। तो वो अमृतसर में रहते थे, पर वहां से वो हैदराबाद सिंह चले गए क्योंकि इनके मामा ने उनको बुला लिया क्योंकि बिजनेस सारी खत्म हो गई, फादर की डेथ हुई। तो वहां आज सिंध में इनके इनकी माँ को साक्षात्कार हुआ, अपनी माँ को ये आई और माँ ने बाबा से श्री कृष्ण का दर्शन किया, साकार हुआ। तो वो रोती रोती आई लेकिन हंसती हंसती गई क्योंकि साक्षात्कार किया। ऐसे बहुत दुखी आत्माएं आती थी और बाबा से साक्षात्कार करके अपने आप को तृप्त अनुभव करती थी। तो ये और ये माँ बेटी थी और इनको कोई उस प्रकार से कोई बंधन भी नहीं था, धन भी नहीं था, अपने मामा के पास ही रहती थी। तो बाबा ने इनको अपने पास रख दिया और ये बहुत अच्छा गाती थी, हारमोनियम बजाती थी और सितार बजाती थी। तो बाबा इनको गीत लिख के देते थे तो उनका तर्ज निकाल करके ये गाती थी, बहुत सुरीली आवाज थी और ओम की ध्वनि करती थी। तो जैसे ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे राधे का साक्षात्कार, लक्ष्मी का साक्षात्कार लोगों को होने लगा। तो ये एक वंडरफुल क्रांतिकारी बात हुई। तो नाम बाबा ने रखा ओम राधे क्योंकि ओम की धुनते थे और ओम की ध्वनि करते करते साक्षात्कार हो जाता था, तो ओम राधे नाम पड़ा। और फिर जो दूसरी हमारी दादी प्रकाशमणि, उनका नाम रमा था, तो राधे भी करीब 17 साल की थी और ये 14-15 साल की थी, स्कूल पढ़ती थी। और इनको सवेरे सवेरे साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का और जैसे ब्रह्मा बाबा का, और श्री कृष्ण ने कहा मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। तो इनके पिता ने भी इनको कहा कि आप जाकर देखो वहाँ क्या होता है, क्योंकि ये न्यूज़ हैदराबाद सिंध में बहुत फैल गई थी। तो ये अगले दिन आई और जैसे ही बाबा को देखा तुरंत इसने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। तो बाबा इसके पिता को जानते थे और पिता इनके ज्योतिषी थे, तो ज्योतिषी होने कारण पिता ने इनकी जन्म पत्री जो बनाई थी उसमें था कि ये बहुत बड़ी संत बनेगी, ये मीराबाई की तरह बन जाएगी और अपना जीवन भगवान को अर्पित करेगी। तो बाबा ने इनको कहा कि आप अपने पिता को पत्र लिखने के लिए कहो कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ। तो ये जब घर में गई और ये बताया तो पिता ने कहा बेटी आपका तो जीवन ही भगवान को अर्पित है, तो इसीलिए पत्र लिख के दिया और अगले दिन से बाबा के पास रहने लगे। तो इसी प्रकार बहुत सारी बहनें आई और उस समय बाबा ने एक स्कूल भी खोला हुआ था जिसमें लड़कियां पढ़ती थी, तो उन लड़कियों को भी बहुत साक्षात्कार होने लगे और कैसे उनमें से भी कितने समर्पित हो गए, मानो एक अलौकिक परिवार बन गया। इसमें सबसे छोटी तो 6 साल की थी क्योंकि एक स्कूल बोर्डिंग स्कूल था। अब इतना उनको अनुभव होने लगे, साक्षात्कार करने लगे। परंतु अब एक और ड्रामा था, क्या ड्रामा था कि बाबा ने, शिव परमात्मा ने इन सबको कहा कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो ये प्रतिज्ञा इन्होंने की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो जब ये बात हैदराबाद सिंध में फैली तो लोगों ने विरोध किया, जो इनके पेरेंट्स थे वो कहे इतने छोटे छोटे बच्चे इन्होंने कैसे प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में थे, इन्होंने कैसे प्रतिज्ञा कर ली। तो बहुत विरोध हुआ, तो बाबा ने फिर सबको, जो छोटे थे उन सबको वापस घर भेजा और जो बड़े थे 18 साल से ऊपर फिर उनको लेकर बाबा कराची चले गए, हैदराबाद सिंध से कराची चले गए। और कराची में कई मकान लेकर के रहे, तो करीब 385 भाई बहने कराची में उन्होंने जैसे बाबा के साथ रहने लगे। अब कराची बड़ा शहर, हैदराबाद सिंध तो छोटा शहर उसकी भेंट में, तो कराची तो बहुत बड़ा शहर है, तो सागर के किनारे है जैसे मुंबई, तो अलग अलग मकान लेकर के ये सब वहाँ रहने लगे। तो सुबह सुबह ये शॉर्ट्स और शर्ट पहन करके सागर के किनारे जाते थे, उसको क्लिफ्टन बीच कहते हैं कराची में, जैसे चौपाटी है ना वैसे वहाँ क्लिफ्टन बीच है, तो वहाँ सागर के किनारे जाके तपस्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो इस प्रकार से क्लिफ्टन बीच में जाते थे। तो बाबा और मम्मा, बाबा तो 60 साल से ऊपर हो गए थे और मम्मा तो पहले ये तो 16-17 साल की आई थी, तो इतना अंतर था, आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक अलौकिक मात पिता के रूप में सबके सामने पालना के लिए निमित्त बने। तो कराची में ये 14 साल रहे, 1937 से लेकर 1950 तक, और इन्हीं 14 सालों में दुनिया का नक्शा बदल गया। आप जानते हैं भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया 47 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 39-45, कम्युनिज्म आ गया सब यूरोप में, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन ये संस्था कराची में ही थी। तो 37 से लेकर 1950 पूरा 14 साल बिल्कुल आइसोलेशन में, दुनिया की निगाहों से दूर, और उसी बीच सिविल वॉर भी हुआ भारत पाकिस्तान का, और अणु युद्ध भी हुआ, एटम बॉम्ब गिराया जापान पर, और भूकंप वगैरह भी बहुत आए। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये सब क्या है, ये तो बिल्कुल आइसोलेशन में थे, इनको तो कोई छू भी नहीं सका, बिल्कुल तपस्या में ही थे। तो बाबा कहते थे, आप अभी तपस्वी बनो, योगी बनो, अब आपके कैसे आपको ये दुनिया बदलनी है। तो फिर 1950 में जब सब समाप्त हो गया, इंडिया भारत रिपब्लिक हो गया और स्वतंत्रता पूरी मिल गई, सब कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1950 में, तो 5 मई 1950 को ये संस्था कराची से माउंट आबू आई। ये भगवान ने उनको कहा कि अभी भारत में जाओ, क्योंकि भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत ही फिर से स्वर्ग बनेगा, और तुमको वहाँ सारे विश्व, वहाँ से सारे विश्व की सेवा करनी है। तो फिर माउंट आबू उन्होंने चुना। माउंट आबू जो स्थान है, ये राजाओं महाराजाओं का गम समर रिसोर्ट है, गर्मी के दिनों में राजस्थान के राजा महाराजा यहाँ अपना समर कैपिटल बनाते थे अप्रैल में जून, तो यहाँ माउंट आबू में आपको बहुत महल मिलेंगे, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, अलवर पैलेस, ये सारी पैलेसेस यहाँ, भरतपुर पैलेस, ये सब है यहाँ। तो जब 1950 में सब वो खत्म हो गया, राजाई खत्म हो गई, तो उस समय इन्होंने, इन राजाओं ने इन महलों को होटल बना दिया। तो अभी माउंट आबू में ये सारे होटल है, जो भी महल है होटल है, या तो हॉस्टल है या तो स्कूल है, ये माउंट आबू है। और तो इन्होंने भी एक स्थान लिया, भरतपुर राजा का महल, और वहाँ वहाँ वो आकर के बसे। फिर जब पता चला कि ये सब भारत में आ गए हैं, तो उसके बाद भारत में सेवाएं शुरू की। तो उस समय की जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, वो बाबा के बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि जो सिंधी लोग, मुल्तानी लोग, सिख लोग, वहां से भाग आए थे भारत में और भारत में आके रेफ्यूजी बने थे, वो कुछ भी नहीं ले आए, हाथ खाली नंगे पैर बिल्कुल, क्योंकि उनको ये डर था, मुसलमान उनको कहते थे या तो मुसलमान बन जाओ या तो हिंदुस्तान चले जाओ हाथ खाली, कुछ भी नहीं मिलना है आपको यहाँ से, और नहीं अगर यहाँ रहना है तो मुसलमान बन जाओ, बस तीसरा चौथा कोई ऑप्शन नहीं था, वो हिंदुस्तान भाग जाओ हाथ खाली, या तो मुसलमान बन जाओ या तो सिर कटवाओ, यही बस मानो यही था। तो कई तो हाथ खाली भाग आए, पर ये तो वही थे 1950 तक। तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो उन बाबा के मित्र थे पहले से, तो उन्होंने कहा कि अभी आपको ऐसे हाथ खाली नहीं जाना, अगर आप भारत में जाना चाहते हैं तो अपना सब सामान लेके जा सकते हैं। तो देखिए ये सब पेटी बिस्तरा ये उस समय सारा पैक किया और एक उनको स्टीमर दिया, स्टीमर जिस स्टीमर में 385 भाई बहनें आए सारा सामान लेकर के। तो इस स्टीमर में भारत में आए, पहला ये स्टीमर का दृश्य है कैसे बैठे, तो कराची से भारत में ओखा बंदरगाह है, ओखा हार्बर जो सौराष्ट्र में है, ओखा वहाँ जामनगर के पास द्वारका के पास, तो वहाँ पर उतरे और वहाँ से बाय ट्रेन अबू रोड आए। तो 14 सालों के बाद इन्होंने दुनिया देखी। तो उस समय की ये ट्रेन है 1950 की, ये ट्रेन है जो उस जिसमें आए और सारा उनको सब कुछ नया लगा, जैसे क्योंकि कराची में ही थे वहीं रहते थे। और फिर ये अबू रोड स्टेशन उस समय का 1950 का। तो उसके बाद फिर ये माउंट आबू आए और माउंट आबू तो पूरा जंगल और केवल राजाओं के महल, बहुत थोड़ी आबादी। तो बाबा ने यहाँ बहुत तपस्या की और मम्मा ने भी बहुत तपस्या की। तो 1952 में हमारा पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। इन बहनों को निमंत्रण मिला अपने लौकिक परिवारों से, तो बाबा ने उनको भेजा उसमें। उसमें कई ऐसे बहनें थी जिनको ये निमंत्रण मिला और एक बहन थी मनोहर इंदिरा दादी, दिल्ली में उनका परिवार था। तो दिल्ली में बाबा ने उनको भेजा अपने परिवार में। तो ये बहुत अच्छा भाषण करती थी, बहुत अच्छा ओम की ध्वनि करती थी। तो ये दिल्ली में जाकर के इसने अपने घर में ऐसे ओम की ध्वनि की, तो जो उसके परिवार वाले थे उनको इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा। ये एग्जाम्पल है, बाकी तो अनेकों के अलग अलग एग्जाम्पल अलग अनुभव है, पर देवी का साक्षात्कार इनसे हुआ। तो फिर मंदिरों से इनको निमंत्रण मिला कि आप हमारे यहाँ करके आप भाषण करें। तो मंदिरों में जाती थी तो वहाँ भी दुर्गा का साक्षात्कार, कई प्रकार से के साक्षात्कार उन भक्तों को हुए इनसे। धीरे धीरे फैलता गया फैलता गया। फिर जमुना किनारे पर दिल्ली में इन्होंने प्रवचन दिए। फिर एक महीने के बाद इन्होंने कहा अभी हम वापस आबू जाएंगे। तो लोगों ने कहा आप ऐसे कैसे आबू जा सकते, हमारा क्या होगा। तो बाबा ने इनको कहा कि अगर उनको आपसे ज्यादा लाभ लेना है तो उनको कहो एक मकान लेकर के देवे, क्योंकि घर में भी कहाँ तक रहेंगे, मकान लेकर देवे तो हम वहाँ अपना सेवा केंद्र शुरू करेंगे। तो मकान सहज मिल गया दिल्ली में, कमला नगर हमारा पहला सेवा केंद्र था जो 1952 में खुला। 50 में भारत में आए और 52 में हमारा पहला सेवा केंद्र भारत में खुला, कराची तो छोड़ आए। और फिर उसके बाद भारत में चारों ओर हमारे सेंटर खुलते गए और वहाँ के भाई बहनें सब माउंट आबू आते थे बाबा से मिलने के लिए। फिर हमारी मम्मा जगत अम्मा सरस्वती ओम राधे जिसको कहा, वो जैसे अलौकिक माँ थी, तो वो लखनऊ गई कानपुर गई और वहाँ पर बहुत लोग आते थे। वहाँ मम्मा से उनको लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था लोगों को, और उसके बाद ये सेवाएं बढ़ती गई और धीरे धीरे सेंटर्स बढ़ते गए और मम्मा हमारी बिल्कुल अव्यक्त होती गई। दादी प्रकाशमणि जो 15 साल की आयु में आई थी वो दादी के साथ ही रहती थी, और 1965 में 48 वर्ष की आयु में हमारी मम्मा का देहांत हो गया, विदेही अवस्था को पाया 24 जून 1965 एट द एज ऑफ 47-48। बहुत छोटी आयु में, लेकिन उन्होंने बहुत सेवाएं दी। और उसके बाद फिर दीदी मनमोहिनी वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, सब उनको एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आया। बाबा ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाला, बहनों को ही दिया, बहनों के नाम पर ही सारा विल कर दिया था, इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन बहनों के नाम से, लेकिन सभी आते हैं परंतु ब्रह्मा कुमारी हम कहते हैं, तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहनों के हाथ में है। तो उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। आप भी बहुत धनाढ्य परिवार की थी, इनके सारे फैमिली मुंबई में आए और मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल, जय हिंद कॉलेज, ये बहुत सारे जो कॉलेजेस और हॉस्पिटल खुले मुंबई में, ये सिंधी लोग कराची से मुंबई आकर के उन्होंने शुरू किया, ये उसी फैमिली की थी। तो इनको भी बहुत साक्षात्कार हुए और 1983 में इन्होंने अपना देह त्याग किया एट द एज ऑफ 73। फिर ब्रह्मा बाबा जाने लगे दिल्ली में, बाबा गए और कैसे वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ बाबा के आगे कुछ एक्शन सॉन्ग गा रही है, और फिर ये पंजाब गुजरात सब जगह बाबा के सेंटर खुलते गए। ये जलंधर से ग्रुप आया हुआ है माउंट आबू, तो परिवार के परिवार आते रहे माउंट आबू, बाबा से सुनते रहे, ज्ञान लेते रहे, बाबा सबकी पालना करते रहे। उनको रोज सुबह बाबा वाणी चलाते थे, फिर वाणी के बाद सबको प्रसाद बाबा खिलाते थे। इस प्रकार ये कार्य चलता रहा और हम देख रहे हैं कि कैसे आज ये वट वृक्ष दुनिया में फैल चुका है, क्योंकि बाबा ने यही सबको कहा कि परमात्मा एक है, वसुधैव कुटुंबकम है, ये सारा ईश्वर का परिवार है, हम सब आत्माएं हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो सब प्रकार के लोग यहाँ आने लगे और अपना जीवन प्रभु को अर्पित करते रहे और घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को कमल फूल समान बनाते रहे। और बाबा को बहुत पत्र लिखते थे तो बाबा उन पत्रों का जवाब देते थे उर्दू अक्षर, क्योंकि बाबा सिंध में रहते थे तो ये सिंधी भी उर्दू की तरह ही है। बाबा पत्र लिखते थे फिर उनका हिंदी अनुवाद करते थे। तो पांडव भवन आप कुछ आप में से कुछ भाई बहनों ने देखा होगा, पांडव भवन में ये बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा बैठ करके ये पत्र लिखते थे, और उसके चारों ओर बगीचा है और बिल्कुल साइलेंस का वातावरण है। वहाँ पर बाबा दिन में आते थे और पत्र लिखते थे, किससे मिलते थे। फिर हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में जहाँ सब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास के फोटोज लगे हुए हैं, जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जो आज भी हम सब ये वाणी सुनते हैं मम्मा और बाबा। तो इस हिस्ट्री हॉल में हम लोगों के अभी क्लासेस होते हैं, करीब 200 भाई बहने बैठ सकते हैं इस हॉल में। फिर ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे और बच्चों से मिलते थे, अभी वो मेडिटेशन रूम है बाबा का कमरा, बिल्कुल साइलेंस का अनुभव करते हैं। कोई गई है पांडव भवन की, जाना है कल जो होकर आए हाथ उठाए। अच्छा, तो ये सब देखा होगा आपने पांडव भवन में, और जिन्होंने नहीं देखा वो कल देखेंगे। ये बाबा का कमरा है और इसी कमरे में बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपना यह देह त्याग किया और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। 18 जनवरी 1969 जब बाबा की आयु 93 वर्ष थी, परंतु लास्ट तक बाबा सीधा बैठते थे, पलथी मार के बैठते थे, कभी लकड़ी नहीं उठाई हाथ में, कभी चश्मा नहीं लगाया बाबा ने 93 की एज तक। और कैसे अव्यक्त हुए बाबा और सूक्ष्म वन के अंदर ही उनके पार्थिव देह के अंतिम संस्कार किए गए थे। और तो 18 जनवरी 1969 को हमारे बहुत सारे भाई बहने आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन ब्रह्मा बाबा को अर्पित करते हैं और हम सारा दिन तपस्या करते हैं। तो ये पांडव भवन में हमारा शांति स्तंभ है, ब्रह्मा बाबा की समाधि। और जिस समाधि पर लोग आकर के तपस्या करते हैं, ये चार धाम हम कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की चार धाम पांडव भवन में आपने देखे होंगे। एक है बाबा का शांति स्तंभ, दूसरा है हिस्ट्री हॉल, तीसरा है बाबा की झोपड़ी और चौथा है बाबा का कमरा। तो हम एक एक स्थान का महत्व बताते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है तो इतना नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ जाते हैं बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद 1969 में दादी प्रकाशमणि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। वो उनकी आयु भी उस समय 45 इयर्स की थी। तो 69 से लेकर 2007 तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे और 85 साल की उम्र में दादी ने अपना देह त्याग किया। और दादी और दीदी दोनों ने मिल करके इतना सुंदर प्रशासन किया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जो दिन दुगनी रात चौगनी गति से ये संस्था बहुत आगे बढ़ गई। और खास करके दीदी दादी को कहते थे ये दो हंसों का जोड़ा है, दो शरीर है लेकिन जैसे एक आत्मा है। दोनों का वो जो उनका फ्रीक्वेंसी थी इतनी मैच करती थी, जो उसने सोचा वही उसने सोचा, जो उसने कहा तो वो भी उसी उसने कहा, मानो इतनी फ्रीक्वेंसी मैच करती थी। और फिर हमारे उस समय जो भी बड़ी बहनें थी वो सब हमारी दादियाँ, तो हम उनको दादी कहते। दादी का मतलब है बड़ी बहन, सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, जैसे हिंदी भाषा में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, तो सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, दादा, और बड़ी बहन को दादी कहते हैं। तो वो उस समय जो समर्पित हुई थी बाबा के पास, 14 साल जो तपस्या की, वो सब हमारी दादियाँ। तो 1972 में हमारा पहला सेवा केंद्र लंदन में खुला, विदेशों में खुलना शुरू हुआ और उनका पहला ग्रुप माउंट आबू आया। ये विदेशी भाई बहने हैं, ये कलर्ड पिक्चर नहीं है क्योंकि उस समय ब्लैक एंड वाइट ही था, तो ये माउंट आबू आए हैं। और 1983 में पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, जो बिल्कुल महल की तरह लगता है। अभी 83 अभी बहुत साल हो गए हैं, थोड़ा रिनोवेशन हो रहा है इस समय, तो इसीलिए नहीं दिखाया आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं, विदाउट पिलर्स वो हॉल है, जहाँ हम लोगों के बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक संत सम्मेलन हुआ 1987 में, कई संत महात्माएं आए थे इस सम्मेलन में। और फिर ये ज्ञान सरोवर 91 में इसकी जमीन ली गई थी और 95 में ये बन के तैयार हुआ, जो हमारी एकेडमी है। अलग अलग प्रोफेशनल विंग्स के भाई बहने यहाँ कार्यक्रम करते हैं। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्लोबल हॉस्पिटल है, जो ग्लोबल हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल एकदम चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और हम लोग कैसे गांव-गांव में जाते हैं और कैंप्स लगाते हैं, आई कैंप्स लगाते हैं, कई प्रकार की कैंप्स लगाते हैं। 50% जो भाई बहने हैं इस हॉस्पिटल के, चाहे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सारा वो समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद 96 में ये पांडव भवन से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शांतिवन, जहाँ रोड शुरू होता है माउंट आबू जाने का, वहाँ हमारा डायमंड हॉल है, शांतिवन है। ये डायमंड हॉल में 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं और लगभग 100 एकड़ ज़मीन है, बहुत और भी बहुत ज़मीन ली गई है। यहाँ हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने 25 अगस्त 2007 को अपना देह त्याग किया, तो उनकी भी समाधि शांतिवन में बनाई गई है, जिसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वहाँ भी अभी अगस्त महीना आने वाला है, तो हम लोग हाफ मैराथन रेस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं माउंट आबू में उनके निमित्त। और फिर दादी जानकी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, वो वैसे विदेश के सेवा केंद्र संभालती थी। दादी जानकी जी जिस देश में जाती थी वहाँ पर कोई ना कोई सेंटर खुल जाता था। इसी प्रकार 140 कंट्रीज में हमारे सेवा केंद्र खुले। और दादी जानकी ने 104 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग किया 2020 में। और फिर उसके बाद दादी हृदय मोहिनी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। दादी जानकी जी के सानिध्य में भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, कई टीचर्स ट्रेनिंग दादी जानकी ने कराई, 1-1 लाख की सभाएं होती थी जहाँ दादी जानकी जी भाषण करते थे। तो इन्होंने अपना देह त्याग किया 2020 में, तो फिर उनके साथ थी दादी हृदय मोहिनी, जो सह मुख्य प्रशासिका थी और फिर वो मुख्य प्रशासिका बनी। तो इन्होंने भी 2021 में अपना देह त्याग किया। दादी हृदय मोहिनी की विशेषता थी वो ट्रांस में वो जाती थी, और ट्रांस में जाती थी और कैसे शिव परमात्मा, ब्रह्मा पिता इनके तन में प्रवेश करके वाणी चलाते थे, जिसको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, वो इनके तन द्वारा वाणी चलाते थे और हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल में वो ट्रांसमिट होता था। ये भी किसने देखा होगा, जरूर जिन्होंने देखा हाथ उठाएं। अच्छा, कईयों ने देखा है। और अच्छा, ये यहाँ ही पूरा किया, इन्होंने अपना देह त्याग 2021 में किया। फिर हमारी एक और दादी थी, दादी रतन मोहिनी जी, वो उसमें ने दादी रतन मोहिनी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, वो उन्होंने अपना देह त्याग किया 100 साल की उम्र में। और इस समय हमारी दो वरिष्ठ बहनी है, एक मोहिनी दीदी जो अमेरिका में रहती है और दूसरी जयंती दीदी जो लंदन में रहती है। 6 मास यहाँ रहते हैं, 6 मास लंदन और अमेरिका रहते हैं, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं। और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारी मुन्नी बहन है जो नीचे शांतिवन में रहते हैं, और एक एक जोन की अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसी प्रकार हमारा ये कार्य चलता है। जो आज हम अनुभव कर रहे हैं ये कोई देहधारी व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये हम लोगों का कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य है। और भगवान अपना कार्य करा रहा है इस सृष्टि परिवर्तन का। परंतु इसके आगे और आपको अगर समझना है तो फिर आप सेवा केंद्रों पर जा करके अवश्य इनको समझेंगे। यहाँ तो आपको केवल चखा चुखी कराया, टेस्ट कराया। हम कहते हैं ट्राई टेस्ट इफ यू लाइक टेक, ट्राई टेस्ट एंड टेक। तो जरूर आप जाएंगे, कल भी आप लोगों ने वायदा किया हम जाएंगे सेवा केंद्र पर। तो कई पूछते हैं यहाँ की फीस क्या है, हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटा पैसा, ये यहाँ की फीस है। सब देने लिए तैयार है, कौन से खोटे पैसे? ये 5 विकार, यही भगवान चाहते, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। और फिर एक वायदा करके जाना है, एक आना लेकर जाना, एक आना माना एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना, ये आना नहीं तो। यही मुख्य बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। तो 5 खोटे पैसे देके जाओ और एक आना लेकर जाओ, तो देखो आपका जीवन धन्य बन जाएगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को कमल फूल समान बनाना है। तो यहाँ हजारों परिवार, लाखों परिवार आते हैं जो घर में घर गृहस्थ में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। कल आपको दिखाए ना कितने सारे भाई बहने यहाँ सेवा करने आए हैं, फिर वापस अपने स्थान पर जाएंगे। पर हमारे जैसे करीब 30-40 हजार बहने हैं जो समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है भिन्न भिन्न सेंटरों पर, और लाखों परिवार आप जैसे जो सेवा केंद्रों पर 1 घंटा रोज आके सत्संग करते हैं, क्लासेस करते हैं। तो जरूर यहाँ से आप प्रेरणा लेकर जाएंगे, और जिस भी सेवा केंद्र के थ्रू आए हैं वहाँ जरूर जा करके और भी पूरा लाभ लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।